जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय चार श्लोक संख्या 156। गोप्यस्तपः किम चरन् यदमोऽस्य रूपम्। लावण्य सारम समोर्ध्वमनन्य सिद्धम्। दृग्भेद्यवन्त्यनु सवाभिनवं दुरापम्। एकांत धाम यत सहास्त्रिय ऐश्वरस्य। गोप्यस्तपः किम चरन् यदमोऽस्य रूपम्। लावण्य सारम समोर्ध्वमनन्य सिद्धम्। दृग्भेद्यवन्त्यनु सवाभिनवं दुरापम्। एकांत धाम यत सहास्त्रिय ऐश्वरस्य। गोप्यस्तपः किम चरन् यदमोऽस्य रूपम्। लावण्य सारम समोर्ध्वमनन्य सिद्धम्। दृग्भेद्यवन्त्यनु सवाभिनवं दुरापम्। एकांत धाम यत सहास्त्रिय ऐश्वरस्य। अनुवाद है। मथुरा की स्त्रियां कहती हैं, मेरे पीछे बोलिए, ना जाने गोपियों ने कौन सा तप किया है। वे अपनी आंखों से भगवान कृष्ण के मुखमंडल रूपी अमृत का निरंतर पान करती हैं, जो लावण्य का सार है तथा अतुलनीय है। वही लावण्य सौंदर्य यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है। वह स्वयं में पूर्ण चिर नवीन तथा अति विरल है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की। ये श्लोक श्रीमद् भागवत से 10:44-14 लिया गया है, जब मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण तथा बलराम को कंस के अखाड़े में मुष्टिक तथा चाणूर नामक महान मल्लों के साथ देखा तो उन्होंने ऐसा कहा था। यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो ये जो घटना है, ये श्लोक जो कृष्णदास कविराज तो ले रहे हैं श्रीमद् भागवत से, तो ये उस समय की घटना है। मथुरा की स्त्रियां कृष्ण के माधुर्य को देखती हैं। वहां जितने प्रकार के लोग थे उतने प्रकार से कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, अलग अलग भावों में दर्शन कर रहे हैं। जो मल्ल थे तो चूंकि उनके शरीर पत्थर के समान कठोर थे तो वे कृष्ण को वज्र के समान देख रहे थे, कठोर। और मथुरा की स्त्रियां क्योंकि कोमल स्वभाव की थीं तो वे कृष्ण के शरीर को अत्यंत कोमल देख रही हैं। तो वे उस समय जब देखते हैं कि इतना अन्याय हो रहा है, कृष्ण और बलराम जो कि बहुत ही कोमल बालक हैं, इनके साथ कोमल व्यवहार होना चाहिए, और कंस के जो मल्ल हैं ये इतने कठोर शरीर वाले हैं, तो ये राजा की सभा में अन्याय हो रहा है, तो हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ से। लेकिन फिर कृष्ण के सौंदर्य से आकर्षित होकर के फिर वे गोपियों की प्रशंसा करने लगे। तो इस प्रकार से गोपियों की तपस्या की प्रशंसा कर रही हैं, आश्चर्य कर रही हैं कि गोपियों ने क्या तपस्या की है, जो कि कृष्ण का ये जो रूप है, जो लावण्य का सार है। तो कृष्ण के रूप में लावण्य भी है और माधुर्य भी है। लावण्य और माधुर्य में क्या अंतर है? कृष्ण का कृष्ण के रूप में लावण्य है नहीं, लावण्य बना है लवण से, लावण्य बना है लवण से, लवण माने नमक, यानी नमकीन है। कृष्ण का जो रूप है वो नमकीन है, नमकीन जैसे कि वो जो है बड़ी अद्भुत लीलाएं करते हैं, कभी तंग करते हैं गोपियों को या चोरी करते हैं, तो ये ध्यान नमकीन है। और माधुर्य मना है मधु से, तो मधुरता है कृष्ण के रूप में, तो मधुर तो है ही है, और साथ साथ लावण्य भी है कृष्ण के रूप में, दोनों चीजें हैं, लावण्य भी है और माधुर्य भी है। तो यहाँ पर बताया गया है लावण्य सारम, लावण्य सारम और असमोर्ध्वम, असम ऊर्ध्वम, ना तो समान है कृष्ण के रूप के कोई रूप और ना उससे ऊपर है। अनन्य सिद्धम, और किसी प्रकार से सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति प्राप्त करे। दृग भी विवंती अनुसवम, तो अपने नेत्रों से हमेशा पीती रहती हैं गोपियां, कृष्ण के रूप को पीती रहती हैं। एकांत धाम यथतः श्री ऐश्वर्य, यश का और श्री का और ऐश्वर्य का एकमात्र भंडार कृष्ण का रूप है। तो ये जो है कृष्णदास कविराज ने चैतन्य महाप्रभु के इस पृथ्वी में अवतीर्ण होने का जो दूसरा कारण है वो वर्णन कर रहे हैं, और इसमें उन्होंने गोपियों के जो है इस भाव की प्रशंसा की है, गोपियों का कैसा भाव है, और भगवान चैतन्य उस भाव का साधन करने के लिए आए। तो जो तीन अंतरंग कारण हैं, कई बार चर्चा हो चुकी है, तो उसमें दूसरा जो कारण है उसकी चर्चा कर रहे हैं कृष्णदास कविराज। तो अब इस श्लोक में गोपियों की तपस्या, चूंकि वो पूछ रही हैं, वो आश्चर्य कर रहे हैं कि गोपियों ने क्या तपस्या की है, तो आज पूरा जो प्रवचन है ये हमारा होगा गोपियों की तपस्या पर। गर्ग संहिता में भगवान कृष्ण के धाम में जब ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ आए और अवतार की प्रार्थना की, तो भगवान कृष्ण पूरी योजना बनाते हैं कि मेरा अवतार होगा और कौन क्या बनेंगे उस अवतार में, लीला में। तो फिर ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, ब्रह्मा जी ने पूछा कि जो गोपियां बनेंगी आपके इस लीला में, तो हे पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फल स्वरूप ये ब्रज में निवास करेंगे, क्योंकि आपका वो स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तो स्त्रियां कैसे आपके ब्रज में आएंगी, तो कौन सी स्त्रियां हैं, कौन प्रकार का वो तपस्या करती हैं या पुण्य करती हैं जिससे कि वो आपके ब्रज में स्थान प्राप्त करेंगे। एता कथम ब्रजे भाव्यां केन पुण्येन कैर्वरे दुर्लभम हि पदम तासाम योगे भी पुरुषोत्तम। तो श्री भगवान कहते हैं पहली जो स्त्रियां हैं वो हैं श्रुतियां, श्रुतियां जो है जो वेदों की ऋचाएं हैं वे गोपियां बनेंगी, तो उन्होंने क्या पुण्य किया है जैसे कि वे गोपियां बनेंगी, श्रुति रूपा गोपियां। तो भगवान कहते हैं पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहां मेरे स्वरूप भूत विराट पुरुष का मधुरवाणी में स्तवन किया था, तब हजार चरणों वाले विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले। श्री हरि ने कहा हे श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। श्वेत द्वीपे च भूमानम श्रुति अस्तु शुभ परम गिराभिस्ता प्रसन्नो भूत सहस्रपान वरम वृणीत योयम वे यन्मनोवांछितम महन ये साम प्रसन्नो हम साक्षात एसाम किम दुर्लभम हितम। तो श्रुतियां क्या कहती हैं, भगवान आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ हैं। बताया गया कि वेदों वेदेश दुर्लभम, वेदों के द्वारा भगवान को जानना संभव नहीं है। तो श्रुतियां कहती हैं कि हम आपको जानने में असमर्थ हैं। वेदों का वर्णन उसी प्रकार से है कि ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, है ना, निषेध विधि से वेदों ने वर्णन किया है भगवान का। तो श्रुतियां कहती हैं कि हम आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वेत्ता ज्ञानी पुरुष यहां जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। हे प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो यही दीजिए, अपने रूप का दर्शन कराइए। तो वेदों के द्वारा भगवान ने कहा है ना कि मेरा दर्शन नहीं हो सकता, ना हम वेदैर न तपसा, है ना, सकेवम विधो दृष्टुम दृष्टवान सीमा में था। तो ये जो वेदों की ऋचाएं हैं वो कहती हैं कि हमें अपना दर्शन कराइए। हे प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो यही दीजिए। वांगमनो गोचरातीतम ततो ना ज्ञायते तुयन् आनंद मात्रमिति यन्वन् अन्ति है पुराविदः तद्रूपं दर्शयास्माकं यदि देयो वरोहिणः श्रुत्वा तन्दर्शयामास तं लोकं प्रकृते परम। श्रुतियों की ये बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया जो प्रकृति से परे है। वह लोक आनंद स्वरूप अविनाशी और निर्विकार है। वहां वृंदावन नामक वन है जो काम पूरक कल्प वृक्षों से सुशोभित है। केवलानु भवानंद मात्रम अक्षर मम व्ययम यत्र वृंदावनम नाम वनम काम दुघेर तुमे। मनोहर निकुंजों से संपन्न वह वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहां सुंदर झरनों और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्नों एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। वहां स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती है। उसके दोनों तट रत्नों से बंधे हैं। हंस और कमल आदि से वह सदा व्याप्त रहती है। मनोरमे निकुंजाढ़्यम सर्वतो सुख संयुतम यत्र गोवर्धनो नाम सुंदर झरे दरीयुत रत्न धातु मया श्रीमान सुपक्षी गण समृत यत्र निर्मल पानीया कालिंदी सरितांबरम रत्न बद्धो भय तटी हंस पद्मादि संकुलम। वहां विविध रास रंग से उन्मत्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोर वय से सुशोभित भगवान कृष्ण विराजते हैं। नाना रास रसोन्मत्तम यत्र गोपी कदम्बकम तत्कदम्बक मध्यस्थ किशोराकृति रच्युतः। उन श्रुतियों के इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले कहो तुम्हारे लिए अब और क्या करूं। आप सुन रहे हैं, गोपियों को भगवान ने अपना धाम दिखाया, अब कहते हैं अब और बोलो क्या करूं। तुमने मेरा यह लोक तो देख ही लिया, इससे उत्तम दूसरा कोई वरदान नहीं है। भगवान कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, श्रुतियों से कह रहे हैं। गोपियां तो बाद में बनेंगी ना, अभी गोपियां नहीं है वो, ये श्रुतियां हैं। दर्शयित्वा चताप्राह ब्रूत किम करवाणी वहां दृष्टो मदीयो लोकोयम यतो नास्ति परम वरम। श्रुतियों ने कहा अब भगवान का धाम देख लिया, अब श्रुतियां क्या कहती हैं? प्रभु आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हमें कामनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की इच्छा हो रही है। हम विरह ताप से संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। कंदर्प कोटि लावण्य त्वयि दृष्टे मनांसि नः कामनी भाव मासाद्य स्मर क्षिप्तान्य संशयम्। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियां आपका संग पाने के लिए जैसे आपकी सेवा करती हैं, वे हमारी भी वैसी ही अभिलाषा है। या तल्लोक के वासिन्य काम तत्व ने गोपिका भजंती रमणम मत्वा चिकीर साजनिन स्वयं। अब भगवान क्या कहते हैं सुनिए ध्यान से, भगवान ने क्या उत्तर दिया? ये आसान नहीं है, ये वरदान आसान नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे श्रुतियों तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ है, फिर भी मैं इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूं, अतः वह सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियां ब्रज में गोपियां होगी। दुर्लभो दुर्घटश्चैव युष्माकं तु मनोरथः मया अनुमोदितः सम्यग् सत्यो भवितुम् अर्हति आगामिनी विरिञ्चोतुम् जाते सृष्ट्यर्थमुद्यते कल्पे सारस्वते चीते ब्रजे गोप्यो भविष्यतः। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे मथुरा मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रीतम बनूंगा। पृथिव्याम भारते क्षेत्रे माथुरे मम मंडले वृंदावने भविष्यामि प्रेयान्वो रास मंडले। जार धर्म से तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा। जार धर्म मतलब विवाहित स्त्री दूसरे पति के साथ, दूसरे पुरुष के साथ जो प्रेम करती है वो जार धर्म कहलाता है। जो सब प्रेमों से बढ़कर है परिकिया, तो परिकिया भाव सब प्रेमों से बढ़कर है, तुम सब श्रुतियां मुझे पाकर सफल मनोरथ हो जाओगी। जार धर्मे अण सुस्नेहम सुदृढ़ सर्वतोधिकम मई संप्राप्य सर्वाही कृतिकृत्या भविष्य। तो भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी पूर्व कल्प में मैंने वर दिया है, उसी के प्रभाव से ये श्रुतियां ब्रज में गोपियां होंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। तास गोप्यो भविष्यन्ति पूर्व कल्प वरान मम अन्यासाम चैव गोपी नाम लक्षणम श्रुतन विधे। अब है मिथिला पूर्वासिनी गोपियां, मिथिला में जहां भगवान का राम, भगवान राम का विवाह हुआ सीता के साथ। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए महापराक्रमी रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए। कमल लोचन श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और उन जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया। सुराणाम रक्षणार्थाय राक्षसानाम बधाय च सीतायाम रामचंद्रो भून वीरो दशरथात्मज। सीता स्वयं वरम गत्वा धनुर्भंगम चकार सह वाह जानकी सीताम रामो राजीव लोचन। हे ब्रह्मा जी उस अवसर पर जनकपुर की स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विवल हो गईं। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया, राघव आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तम दृष्ट्वा मेथिला सर्वे पुरंद्रयो मुमुहुर विधे रहस्यम रहस्योचुर महात्मानम भरतानो भवहे प्रभु। तब श्री राम ने कहा सुंदरियो तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ, अब देखो भगवान क्या कहते हैं, तपस्या करना है। तो इन मिथिलापुर की स्त्रियों को भगवान क्या आदेश देते हैं तपस्या करने के लिए? तुम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ दान तप शौच एवं सदाचार का भली भांति पालन करती रहो, तुम्हें ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। तामाह राघवेन्द्रसु मासोकम कुरुत स्त्रियः द्वापरान्ते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम् तीर्थम् दानम् तपः शौचम् समाचरत तत्त्वतः श्रद्धया परया भक्त्या ब्रजे गोप्यो भविष्यत्। इस प्रकार वर देकर करुणानिधि से राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। अब आगे क्या हुआ, कोसलपुर से भगवान की बारात निकलती है, मिथिलापुर से रास्ते में कोसलपुर पड़ा। उस समय मार्ग में कोसल जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए उन कमनीय कांति राम को देखा, उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन पति के रूप में वरण कर लिया। मार्गे च कौशला नार्यो रामम दृष्ट्वाति सुंदरम मनसा वव्रीरे तम वै पतिम कंदर्प मोहनम। उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उन समस्त स्त्रियों को मन ही मन वर दिया। तो वहां मौका नहीं था बातचीत करने का, लेकिन उनके मन की बात को भगवान समझ गए और इशारे में ही उन्होंने वरदान दिया, तुम सभी ब्रज में गोपियां होंगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। मरसापि वरम रामो ददौताभ्यो यथे सभिन् मनोरथम करिष्यामि ब्रजे गोप्यो भविष्यत्। अच्छा, ये है कोसलपुर वासिनी स्त्रियां। अब ये कोसलपुर वासिनी जो स्त्रियां हैं, ये भगवान के वरदान से, रामचंद्र के वरदान से ये क्या हुई, नंद महाराज घर में जाकर के रत्नमय भूषणों से विभूषित कन्याएं उनके गोष्ठ में गऊओं का गोबर उठाने का काम करने लगी। ये कितनी बड़ी ये जो है कृपा है उनको प्राप्त हुई। क्या काम मिला उनको, गोबर उठाने का काम मिला। कहाँ, नंद भवन में, नंद महाराज की 1 करोड़ गऊएं थी, हाँ? गोबर उठाने का काम करने लगी। वहां सुंदर श्री कृष्ण को देखकर उन कन्याओं को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया और वे श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए नित्य यमुना जी की सेवा पूजा करने लगी। तो क्या तपस्या की उन्होंने, यमुना जी की सेवा पूजा करने लगी। आनंद राजस्य गृहे कन्या रत्न भूषिताम गवाम गोमय हारिण्यो बभोवर्गो ब्रजे सुचाम श्री कृष्णम सुंदरम दृष्ट्वा कन्या जाति स्मराश्यता कालिंदी सेवनम चक्रुर नित्यम श्री कृष्ण हे तवे। फिर एक दिन श्यामल अंगों वाली विशाल लोचना यमुना जी उन सबको दर्शन देकर और वरण प्रदान करने के लिए तैयार हुई। यमुना जी ने दर्शन दिया और कहा कि वर मांगो। अतः गदा श्यामलांगी कालिंदी दीर्घ लोचना ताभ्या सुदर्शनम दत्वा वरम दातुम समुद्यतम। तब उन गोप कन्याओं ने ये वर मांगा कि ब्रजेश्वर नंद राज के पुत्र श्री कृष्ण हमारे पति हों। तब तथास्तु कहकर यमुना वहीं अंतर्धान हो गई। तावव्रीरे ब्रजेशस्य पुत्रो भूयात् पतिश्चन तथास्तु चोक्त्वा कालिंदी तत्रैवान्तरधीयत। तो ये सब कन्या है वृंदावन में कार्तिकी पूर्णिमा की रात को रास मंडल में पहुंची। वहां श्री हरि ने उनके साथ उसी तरह विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र विहार किया करते हैं। ता प्राप्ता वृंद कारण्य कार्तिक्याम रास मंडले ताभि सार्धम हरि रे मे सुरे भी सुर राडिव। अच्छा, तो अब कोसलपुर से भगवान फिर आए कहाँ, अयोध्या में। हाँ, तो अयोध्या की जो स्त्रियां हैं वो देखती हैं राम को। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। ये सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखने के लिए दौड़ आईं। आगतम सीतया सार्धम सैनिक सहतम सहितम रघुम अयोध्या पुरवासिन्या श्रुत्वा द्रष्टुम समायुः। श्री राम को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया, वे प्रेम से विह्वल हो मूर्छित हो गईं। फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर, अब क्या तपस्या की उन्होंने, श्री राम के व्रत में परायण होकर सरयू के तट पर तपस्या करने लगी। सरयू नदी है अयोध्या में, वहीं पर तपस्या करने लगे। वीक्षितम मोहमापन्ना मूर्छिता प्रेम विह्वला ते पुस्तपस्ता सरयू तीरे राम धृते व्रतम। तब उनके सामने आकाशवाणी हुई, सरयू के तट पर तपस्या करती हुई उनको आकाशवाणी सुनाई दी कि द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। आकाशवाग भूत तासाम द्वापरांते मनोरथ भविष्यति न संदेहा कालिंदी तीर जेवने। तो इस प्रकार से भगवान राम की लीला में अभी तक तीन प्रकार की स्त्रियां की चर्चा हुई है, मिथिलापुर वासिनी, कौशलपुर वासिनी, अयोध्या वासिनी। अच्छा, अब इसके बाद ऋषि रूपा गोपियां हैं। ऋषि कौन से ऋषि हैं? दंडकारण्य के ऋषि। तो इसके पहले जो श्रुति रूपा गोपियां थी वे ब्रजवासी गोपों के घर में उत्पन्न हुई तथा उन्होंने ब्रज भूमि की ईश्वरी वृंदा देवी की आराधना की तथा वृंदा देवी की के वर से श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, श्री कृष्ण को प्राप्त किया। अगर ज्यादा वर्णन करूंगा तो फिर समय नहीं मिलेगा हमको, तो जितना अधिक हो सके अधिक अधिक विभिन्न प्रकार की गोपियों का मैं वर्णन कर रहा हूं। तो अब है ऋषि रूपा गोपियां। तो ये ऋषि हैं, तो भगवान राम पिता की आज्ञा से दंडक वन में आते हैं और सीता लक्ष्मण भी उनके साथ थे और हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वहीं बहुत से मुनि थे, उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। समझ रहे हैं, दंडकारण्य के ऋषि पहले से ही गोपाल के प्रति उनकी निष्ठा थी, गोपाल भगवान के प्रति। रास लीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे, ऋषियों की पहले से ही माधुर्य भाव में कामना थी गोपाल जी के साथ। गोपालो उपासका सर्वे दंडकारण्य वासिनः ध्यायन्तः सततम् माम् वै रासार्थम् ध्यान तत्परम्। उस समय श्री राम की युवा अवस्था थी, वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे, जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी। इनका तो गोपाल रूप नहीं है राम का, जटाजूट धारण किए हैं। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम में उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषि गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे, अतः दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया, उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम दिखाई दिए। ये साम आश्रमम आसादे धनुर्बाणे धरो युवा ते साम ध्याने गतो रामो जटा मुकुट मंडितः अन्य कृतिम ते संवीक्ष परम विस्मित मानसा ध्यानादुत्थाय ददृशु कोटिकंदर्पय सन्निभम। तब वे बोले, अहो आज हमारे गोपाल जी बंसी और बेंत के बिना ही पधारे हैं। राम को देखा, कहते हैं हमारे गोपाल जी तो आ गए, बंसी और बेंत नहीं है इनके हाथ में। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सबने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। ऊचुस्ते यस्तु गोपालो बंसी बेत्रे बिना प्रभु इत्थम विचार्य मनसा नेमुश्चक्रु स्तुतिम पराम। तब श्री राम ने कहा, हे मुनियो वर मांगो। ये सुनकर सभी ने एक स्वर से कहा, जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त है वैसे ही हम भी चाहते हैं। वरम वृणीत है मुनि यहाँ श्री राम स्थानुवाच यथा सीता तथा सर्वे भूयात्म इतिवादिनः। श्री राम बोले, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे भाई लक्ष्मण है वैसे हम भी आपके भाई बन जाएं, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, अतः ये वर महान कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। सीतो पमेय वाक्येन दुर्घटो दुर्लभो वरः एक पत्नी व्रतो हम्बे मर्यादा पुरुषोत्तम। अतएव तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा और वहीं मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण करूंगा। तस्मात् मन्वरेणापि द्वापरान्ते भविष्यत् मनोरथम करिष्यामि भवतां वांछितं परम। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। अब ये हो गई ऋषि रूप गोपियां। अब पुलिंद कन्या गोपियां हैं, पुलिंद मतलब भील, जंगल के जो भील हैं उनकी कन्याएं हैं। पंचवटी में भगवान आए और वहां पर्णकुटी में रहकर वनवास की अवधि पूरी करने लगे। उस समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा, उनमें राम से मिलने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होने के कारण वे प्रेम से बेहबल हो गईं। यहां तक कि श्री राम के चरणों की धूल मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगीं। क्यों? क्योंकि वो तो सोचते हैं कि हमारा कोई अधिकार ही नहीं है, इनसे मिलने की तो बात क्या, इनसे बात करने की भी जो है ना हमारी योग्यता नहीं है, हम क्या योग्य हैं, है कि नहीं, अशिक्षित हैं और असभ्य हैं, भीड़ों की कन्याएं हैं, इसलिए क्या सोचती हैं कि हम प्राण छोड़ देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो श्री राम के चरणों की धूल अपने सिर में रख करके आत्महत्या करने का विचार किया उन्होंने। तन्दर्शन स्मर रोजा पुलिंद्या प्रेम बेहला श्रीमत पाद रजो धृत्या प्राणान त्यक्तुम समुद्यतम। अब भगवान उस समय वो तो सर्वंतर्यामी है श्री राम, तो ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए। राम ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। ब्रह्मचारी वपुर भूत्वा राम सत्र समागता प्राण संत्यागम मा कुरुत स्त्रियो वृथाम। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, इस प्रकार का आदेश देकर श्री राम का वह ब्रह्मचारी रूप वहीं अंतर्हित हो गया, अंतर्धान हो गए भगवान। वृंदावने द्वापरांते भविता वो मनोरथ ब्रह्मचारी। तो ये पुलिंद कन्या जो है काम वन में जो पुलिंद जाति के जो भील थे उनकी कन्या हुई हैं, और उनका वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। ये जो है भगवान कृष्ण के चरणों में जो गोपियों के स्तन का कुमकुम लगा था वो जब घास में लग जाता है तो घास से वो छुड़ा करके अपने मुंह में स्तनों में लगाती हैं, इस प्रकार से अपनी जो इच्छा है काम वासना है वो पूर्ण करती हैं। तो ये पुलिंद कन्याएं हैं, हाँ, तो उनका इसी प्रकार से उनका जो है होता है, और भी वर्णन है उनका मिलन होता है भगवान से, तो वो सब ज्यादा विस्तार से इसलिए मैं जान ही रहा हूं। अब ये कि सीता गोपियां हैं, तो भगवान राम जो है जब अयोध्या में आए रावण का वध करके, तो फिर क्या हुआ कि लोकापवाद के कारण सीता को वन में भगवान राम ने छोड़ दिया। और तब विधि पूर्वक सुवर्णमय सीता की प्रतिमा बना करके श्री राम यज्ञ करते थे। इसी श्री राम के भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह एकत्र हो गया। प्रत्येक अश्वमेध यज्ञ में एक सोने की सीता बनाई जाती थी, तो एक भवन था जिसमें सोने की सीता भी जो है ना भरी हुई थी, बहुत सोने की सीताएं भर गई थी एक भवन में। तो एक दिन क्या हुआ कि वे सब इकट्ठी हो गईं और जिंदा हो गईं, और चैतन्य घन रूपा होकर श्री राम के पास आईं। यज्ञ सीता समूह भून मंदिरे राघवस्य च चैतन्य घना भूत्वा रन्तुं रामं समागतम्। उसमें श्री राम ने उनसे कहा, प्रियाओ मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तब ये सभी प्रेम परायणा सीता मूर्तियां श्री राम से कहने लगी, ऐसा क्यों, हम तो आपके सेवा करने आई हैं, हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियां भी हैं, फिर आप हमें ग्रहण क्यों नहीं करते। यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धनांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही हैं। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले महापुरुष हैं, यह अधर्मपूर्ण बात आपके श्रीमुख से कैसे निकल रही है कि आप हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यह आपका धर्म है। यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा। ताहा है राघवेन्द्रेशम नाहम गृहणामि हे प्रिया तदो तुस्ता प्रेम परा रामम दशरथात्मजम कथम चास्मान गृहणासी भजंती इर्मेथिली सती अर्धांगी यज्ञ कालेशु सततम कार्य साधनी धर्मस्थस्तुम श्रुतिधरो अधर्म भाषसे कथम कथम करम गृहीत्वा दयसी ततः पापम अवाप्सी। तो श्री राम ने क्या कहा, हे सतियो तुमने मुझसे जो बात कही है वो उचित है, सत्य है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राजर्षि कहते हैं, अतः मैं नियम को नहीं छोड़ सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मणी है, इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वृंदावन में पधारो, वहीं मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान श्री हरि ने कहा, हे ब्रह्मा जी वे यज्ञ सीता ही ब्रज में गोपियां होंगी। समीचीनम वचः सत्यो युष्माभिर्गदितं जमे एक पत्नी व्रतो हम हि राजर्षि सीतेकयां तस्मान् यूयं द्वापरान्ते पुण्ये वृंदावने वने भविष्यति करिष्यामि युष्माकं तु मनोरथम। तो फिर यज्ञ सीता स्वरूप गोपियां फिर कैसे जन्म लेती हैं, इनका वर्णन सब पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक तथा मंगल का धाम है। दक्षिण दिशा में उसीनर नामक एक देश है जहाँ 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। वहाँ के गोप अनावृष्टि के भय से व्याकुल होकर अपने कुटुंब और गऊओं के साथ ब्रजमंडल में आ गए। उन्हीं के घरों में ये यज्ञ सीताएं उत्पन्न हुई। ठीक है, यज्ञ सीता गोपियां जो है राधा रानी के पास आती हैं व्रत पूछने के लिए कि कौन सा व्रत है। अब यज्ञ सीता स्वरूप गोपियों का वर्णन सुनो जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक है और मंगल का धाम है। गोपी नाम यज्ञ सीता नाम आख्यानम श्रुणो मैथिल सर्व पापे हरम पुण्यम कामदम मंगलायनम। जी यज्ञ सीता गोपियां है तो ये गोपांगनाएं ब्रज में उत्पन्न हुई। उन सबके शरीर दिव्य थे और दिव्य यौवन से विभूषित थीं। एक दिन वे सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके उन पर मोहित हो गईं और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के लिए श्री राधा के पास गईं। यज्ञ सीता गोपियां राधा रानी से व्रत पूछती हैं। तेषां गृहेषु संजाता यज्ञ सीता से गोपिका श्री रामस्ते वरा दिव्या दिव्य यौवन भूषिता श्री कृष्णम सुंदरम दृष्ट्वा मोहिता स्तान्यपेश्वर व्रतम कृष्ण प्रसादार्थम प्रष्टुम राधाम समायुम। अब ये यज्ञ सीता गोपियां राधारानी से व्रत पूछती हैं, क्या कहती हैं, हे दिव्य स्वरूपे कमल लोचने दृष्टभानु नंदिनी हे श्री राधे आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बता दो। ब्रजभानु सुते दिव्ये हे राधे कंज लोचने श्री कृष्ण से प्रसादार्थम बद किंचिन व्रतम शुभम। ये यज्ञ सीता गोपियां कहती हैं राधा रानी से, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ हैं वे श्री नंदन नंदन तुम्हारे बस में रहते हैं। हे राधे तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत हो। श्री राधा रानी कहा, हे प्यारी बहनों श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे बस में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रजभानु सुते दिव्ये हे राधे कंजलोचने श्री कृष्ण से प्रसादार्थम बद किंचिन व्रतम शुभम तव वत्सो नंद सोनुर देवेरपेशु दुर्गमः तुम जगन मोहिनी राधे सर्वशास्त्रार्थ पारगम। श्री कृष्ण से प्रसादार्थम कुरुत एकादशी व्रतम तेन वश्यो हरि साक्षात भविष्यति न संशयः। तो राधा रानी बताती हैं कि मैं तुम्हें इस एकादशी के व्रत का फल बताती हूँ जिसके श्रवण मात्र से वास्तविक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी वृत्तस्यास्य फलम वक्षे व्रजांगन यस्य श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेन। सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, तो आप लोग अगर सुनोगे तो लाभ होगा। सो नहीं कृष्ण प्रिया, एकादशी के फल को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो राधा रानी बताती हैं किससे, किससे बताती हैं? यज्ञ सीता गोपियों से बताती हैं, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। क्या समझे? वाजपेय यज्ञ, वाजपेय कोई यज्ञ है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य व्रत के पालन मात्र से पा लेता है। 88,000 जुजान भोजय थे तो यहाँ सत्कृतम फलमाप्नोति द्वादशी व्रतकृन्न रहम। और क्या फल है एकादशी का? जो समुद्र और वनों सहित सारी पृथ्वी का दान करे। क्या समझे? समुद्र और वनों सहित सारी पृथ्वी का जो दान करे उससे भी 1,000 गुना पुण्य एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। ठीक है। ससागर वनोपेताम यो ददाति वसुंधराम तत्सहस्रे गुणम पुण्यम एकादश्या महाव्रते। और जो पाप के कीचड़ से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। ये संसार नार, ये संसार नवे मग्ना पापेकम पापे पंक समाकुले ते साम उद्धरणार्थाय द्वादशी व्रत उत्तमम। 1,000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। क्या समझे? 1,000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के व्रत के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। अश्वमेध है 1,000 राजसूय शतानी च एकादश उपवास कलाम न रहते षोडशी। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य अपने माता की कुल की 10 पीढ़ियां, क्या समझे? एकादशी का जो व्रत करता है अपने माता के कुल की 10 पीढ़ियां और पिता की कुल की 10 पीढ़ियां और पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। समझे? 10वें मात्र के पक्षे तथा वह 10 पैतृ के प्रियाया 10 पक्षे तू पुरुषान उद्धरे नरहम। हे गोपियों, मेरु और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक और एक तरफ हैं और एकादशी का व्रत दूसरी तरफ हो तो उन पर्वतों जैसे पापों को जलाकर भस्म कर देती है एकादशी, जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को जला दे। रुई का पहाड़ हो और एक चिंगारी आग की हो, क्या होगा? जला देगी। ऐसे पापों का पहाड़ सुमेरु पर्वत के समान हो और एकादशी का व्रत जो है ना जला देता है। मेरु मंदर मात्राणी पापानी सतजन्मसु एका एकादशी गोप्यो दहते तूल राशिवन। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की जो कथा सुनता है वो 7 दीपों से पृथ्वी के दान का फल पाता है। क्या? 7 दीपों से युक्त पृथ्वी का दान, सप्त द्वीप, ये पृथ्वी के 7 द्वीपों का दान करके जो फल मिलेगा वो फल एकादशी को विष्णु कथा सुनने से मिलता है। एकादशी दिने विष्णु सुनते यो हरे कथाम सप्तद्वीप वती दाने यत फलम लभते च सहम। प्रभास कुरुक्षेत्र केदार बद्रिकाश्रम काशी और सूकर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण और 4,00,000 संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्यों द्वारा जो दान दिया जाता है वो भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। क्या समझे? संखोद्धारे नरास्नात्वा दृष्ट्वा देवं गदाधरं एकादश उपवासस्य कलाम न रहन्ति षोडशी। हे गोपियों, जैसे नागों में शेष जी श्रेष्ठ हैं और पक्षियों में गरुड़ जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है और पत्रों में तुलसी दल श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में क्या श्रेष्ठ है? एकादशी। नागानाम चायथा सेता पक्षिणाम गरुड़ो यथा देवानाम चायथा विष्णुर्वर्णानाम ब्राह्मणो यथा वृक्षाणाम चायथा स्वत्था पत्राणाम तुलसी यथा व्रतानाम चा तथा गोप्यो वराच एकादशी तिथि। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। समझे? 10 वर्ष है सहस्राणी तपस्तप्यति यो नरः तत्तुल्यं फलम् आप्नोति द्वादशी व्रत कृन्नरः। तो फिर क्या हुआ? राधारानी की बात सुनकर के इन गोपियों ने क्या किया, यज्ञसीता गोपियों ने क्या किया? फिर अजन श्री राधा के मुख से इस प्रकार एकादशी की महिमा सुनकर यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिकाओं ने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से विधि पूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। एकादशी व्रत से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान श्री हरि ने मार्ग शीर्ष की पूर्णिमा की रात में उन सबके साथ रास किया। यदि राधा मुखा श्रुत्वा यज्ञ सीता च गोपिका एकादशी व्रतम चक्रुर विधिवत कृष्ण लालसम एकादशी व्रतेनापि प्रसन्ना श्री हरि स्वयं मार्ग शीर्षे पूर्णिमायाम रासम ताभिश्चकार। हाँ, अब देवकन्या गोपियां हैं, गोपियां बनी हैं। कैसे? रुचि के यहां पुत्र रूप से अवतीर्ण भगवान यज्ञ को देखकर, भगवान यज्ञ का अवतार हुआ। रुचि और आकुति, माता आकुति हैं मनु की पुत्री और रुचि जो है ना पिता हैं, तो उनके घर में भगवान यज्ञ का अवतार हुआ तो उनको देख करके देवांगनाएं प्रेम रस में निमग्न हो गईं। यज्ञावतारम रुचिरम रुचि पुत्रम देवस्पतिम वोहिता प्रीति भावेन देख देव है जन स्त्रियः। फिर उन्होंने क्या किया, क्या तपस्या की? देवल जी के उपदेश से देवल मुनि के पास गई और उनसे उपदेश प्राप्त किया तपस्या करने का। हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगी तो हे ब्रह्मा जी वे सब मेरे ब्रज में जाकर गोपियां बनेंगी। भगवान कह रहे हैं ताश देवल वाक्य ने तपस्ते पूर्व हिमाचले भक्त्या परमया तामे गोप्यो भाव्या ब्रजे विधे। अच्छा, इसके बाद औषधि रूपा गोपियां, औषधियां भी गोपियां बनी। कैसे? भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ जब, तो भगवान धन्वंतरी जब इस भूतल पर अंतर्धान हुए उस समय संपूर्ण औषधियां अत्यंत दुख में डूब गईं और भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगी। फिर सबने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरंभ की। 4 युग व्यतीत होने पर भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, कितना तपस्या की औषधियों ने? 4 युग मतलब 43,20,000 साल, सतयुग त्रेता द्वापर कली चारों मिला करके। अंतरहिते भगवती देवे धन्वंतरो भुवि औषध्यो दुःखमापन्ना निष्फला भारते भवन सिद्ध्यर्थम तास्तपस्ते पुहु स्त्रियो भूत्वा मनोहर चतुर्योगे व्यतीते तो प्रसन्नो भूधरी परम। तुम सब वर मांगो, किसने कहा? भगवान ने। ये सुनकर स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोली तब उन श्री हरि का दर्शन करके वे सब की सब मोहित हो गईं और बोली आप हमारे पति तुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। परम व्रणीत चेत्युक्तम श्रुत्वा नार्यो महावने तम दृष्ट्वा मोहमापन्ना ओचुर भरता भवात्रनहम। भगवान श्री हरि बोले हे औषधि स्वरूपा स्त्रियों द्वापर के अंत में तुम सभी लता रूप से वृंदावन में रहोगी। भगवान ने क्या कहा कि तुम लताओं का रूप धारण करो वृंदावन में और वहां रास में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो भक्ति भाव से परिपूर्ण वे बड़भागिनी वनांगनाएं वृंदावन में लता गोपियां बनेंगी। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से भक्ति भाव समायुक्ता भूरि भाग्या वरांगना तथा गोप्यो भविष्यं वृंदारण्ये पितामहम्। अच्छा फिर है जलंधरपुर वासिनी गोपियां, जलंधरपुर में जलंधर की पत्नी थी वृंदा और भगवान उस वृंदा के पति हुए। जलंधर नगर की स्त्रियां वृंदा के पति भगवान श्री हरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगी कि साक्षात श्री हरि हमारे स्वामी हो। जालंधर यानार्यो ये च वृंदा पतिम हरिम ऊचुरवायम हरि साक्षात अस्माकम तु वरम भवेन। उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई कि तुम शीघ्र ही रमापति की आराधना करो, फिर वृंदा की ही भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिया गोपी होगी। आकाशवाणी हुई तपस्या करने की। आकाश वाग भूतासाम भजता सो रमापतिम यथा वृंदा तथा योयम वृंदारण्ये भविष्यत। अब इसके बाद है समुद्र कन्या गोपियां, समुद्री कन्याएं गोपियां बनी। कब? भगवान का अवतार हुआ मत्स्य रूप में, मत्स्य के रूप में मत्स्य भगवान का अवतार हुआ तो उनको देख करके समुद्र कन्याएं मुग्ध हो गईं। मत्स्य भगवान के वरदान से वे भी ब्रज में गोपियां होंगी। समुद्र कन्या श्री मत्स्यम हरिम दृष्ट्वा च मोहिता ताहि गोप्यो भवेशन्ति श्रीमत्स्यस्य बरात ब्रजे। इसके बाद बरहस्मतीपुरी वासिनी गोपियां, बरहस्मतीपुरी में भगवान का अवतार हुआ किस रूप में? पृथ्वी रूप में। पृथ्वी राजा बड़े प्रतापी थे, उन महाराज ने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से सारी अभीष्ट वस्तुओं का दोहन किया था। ये तो विस्तृत कथा श्रीमद् भागवत में है। उस समय बरहिस्मती नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो गईं और प्रेम से बेहबल हो अत्रि मुनि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा पृथ्वी बड़े ही पराक्रमी राजा हैं, ये किस प्रकार से हमारे पति होंगे ये बताने की कृपा कीजिए। बरहिस्मती भवास्तत्र पृथुम दृष्ट्वा पुरस्त्रियः अत्रे समीपम् आगत्य ताओ चुर्मोह विह्वलम् अयम् तु राजराजेन्द्रः पृथु पृथुलय विक्रमः कथम वरो भवेन्नो वयम् तद्वन्तु मे महामुने। अत्रि ने क्या कहा? अत्रि मुनि ने कहा कि तुम सब शीघ्र ही आज इस गौ को दोहो। कौन सी गौ? जो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके पृथु महाराज के पास आ गई है। ये संपूर्ण पदार्थों को धारण करने वाली धरणी देवी है, तुम्हारे सारे मनोरथों को चाहे वे समुद्र के समान अपार दुर्गम क्यों ना हो अवश्य पूर्ण कर देगी। तब उन स्त्रियों ने मन को दोहन पात्र बनाकर अपने मनोरथों का दोहन किया, इसी कारण वे सब के सब वृंदावन में गोपियां बनेंगी। अपने मनोरथ को दोह लिया पृथ्वी रूपी गाय से। मनोरथम प्रदुहुर मनापात्रेण ताशगाम तस्माद् गोप्यो भविष्यन्ति वृंदारण्ये पितामहम्। इसके बाद अप्सरा गोपियां, स्वर्गलोक की अप्सराएं हैं, ये गोपियां बनी। अब ये कब, ये कौन सी घटना है? भगवान का अवतार हुआ नर नारायण के रूप में। बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं जिनका रूप बहुत मनोहर था और कामदेव की सेनाएं थी, भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए कहां आई? गंधमादन पर्वत पर। परंतु उन्हें देखकर वे सुदबुद खो बैठी, उनको विचलित करना चाहती थी और खुद मोहित हो गई नारायण पर। उनके मन में भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सिद्ध और तपस्वी नारायण मुनि ने कहा, तुम ब्रज में गोपियां होंगी और वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। कान सेना मोहनार्थम दिव्या अब सरसोवरा नारायण से तहसा अभूर्गंध मादनी भर्तिका माशता आह सिद्धो नारायणो मुनि मनोरथो वो भविता ब्रजे गोप्यो भविष्यत। अब सुतल वासिनी गोपियां, सुतल लोक में जो स्त्रियां थीं वो गोपियां बनी। किस समय? भगवान वामन देव का अवतार हुआ जब। सुतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उन्हें पाने के लिए उत्कट इच्छा प्रकट करने लगी, फिर तो उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। अतः वे भी वृंदावन में गोपियां होंगी। स्त्रियः सुतलवासिन्यौ वामनं वीक्ष्य मोहिता तपस्तप्ता भविष्यन्ति गोप्यो वृंदावने विधे। अब फिर नाग कन्या गोपियां, नाग कन्या जिन नाग राशि कन्याओं ने शेष अवतार में भगवान को देखकर उन्हें पति बनाने की इच्छा से उनकी सेवा समाराधना की है, वे बलदेव जी के साथ राज विहार करने के लिए ब्रज में उत्पन्न होंगी। ये नाग कन्याएं, इनका संबंध कृष्ण से नहीं है, बलराम जी से है। नागेंद्र कन्या शेषम भेजोर भक्त्या वरे छया संकर्षण सरासार्थम भविष्यन्ति व्रजेतताम। अब राधा रानी की तपस्या, राधा रानी ने क्या तपस्या की? हालांकि राधा रानी के लिए कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वयं ही भगवान की आह्लादनीय शक्ति है। लेकिन तो अभी लीला के लिए राधा रानी चंद्रानन सखी से पूछती हैं, हे सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक महान पुण्यजनक और मनोवांछित वस्तु को देने वाली है। राधा रानी पूछती हैं किससे? चंद्रानना से पूछती हैं कि बताओ कुछ ऐसी पूजा जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो। श्री कृष्णस्य प्रसन्नार्थम परम सौभाग्यवर्धनम महापुण्यम वांछितदम पूजनम वदय कस्यचिन। हे भद्रे, तुमने गर्गाचार्य जी के मुख से शास्त्र चर्चा सुनी है, इसलिए तुम मुझे कोई व्रत या पूजन बताओ। तो आभद्रे धर्म शास्त्रम गर्गाचार्य मुखाश्रुतम तस्मात् व्रतम भोजनम वा दोहे मह्यम महामते। तो चंद्रानना राधा रानी से तुलसी जी की पूजा करने के लिए कह रही हैं, क्या बताती हैं कि तुलसी जी की पूजा करना चाहिए। चंद्रानना बोली, हे राधे, परम सौभाग्यदायक महान पुण्यजनक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है क्या तुलसी की सेवा। परम सौभाग्यदम राधे महापुण्यम वर प्रदम श्री कृष्णस्यापि लब्ध्यर्थम तुलसी सेवनम मतम। तो तुलसी का बहुत महात्म्य है, बहुत महात्म्य है, तो मैं उसमें से कुछ ही बता रहा हूँ। हे सखी, आज देव चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी सार्ग धनवा श्री हरि के महात्म की भांति तुलसी के महात्म को भी कहने में समर्थ नहीं है। इतना तुलसी का महात्म है कि ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। तुलस्या सखी महात्म्यम आदि देव चतुर्मुखम असमर्थो भवेद भक्तुम यथा देवस्य सार्गिनहम। जो स्त्री या पुरुष चंदन युक्त तुलसी दल श्री कृष्ण के चरणों पर चढ़ाए उसे ये सब फल प्राप्त होते हैं। अतः गोप नंदिनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो जैसे श्री कृष्ण सदा तुम्हारे बस में रहे। श्री कृष्ण चंद्र चरणे तुलसी चंद्रे हरियुताम जो ददाति पमान स्त्री वा यथोक्तम फल माप्नुयान। तुलसी सेवनम नित्यम कुरु तुम गोप कन्य के श्री कृष्ण वशताम याति ये न वा सर्वदेवी। तो फिर क्या हुआ? इस प्रकार चंद्राना की कही हुई बात सुनकर राधेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवा का व्रत आरंभ किया। अब राधा रानी का व्रत कैसे हुआ वो आप सुनिए। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से बनी थी और किनारे किनारे पद्मराग मणि जड़ी हुई थी। तुलसी मंदिर चारों तरफ दीवार बनवाई राधा रानी ने। केतकी वन मध्य चा सतहस्तम सुवर तुलम वो चैर हे में खचन भित्ति पद्मरागे ततम शुभम। वह सुंदर मंदिर पन्ने हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था। उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। परिक्रमा की जो भूमि है वह चिंतामणि की बनी हुई है, तुलसी की परिक्रमा की भूमि। हीरन हरी हरिन हीर के मुक्ता नाम प्राकारेण महोल्लसन सर्वतस्तोलिका युक्तम चिंतामणि सुमंडितम। बहुत ऊंचा तोरण उस मंदिर की शोभा बढ़ाता था, चारों ओर ताने हुए सुनहले बितानों के कारण वह तुलसी मंदिर बैजयंती पताका से युक्त इंद्र भवन सा दीप्यमान था। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजित मुहूर्त में उसकी सेवा आरंभ की। एतादृशं श्री तुलसी मंदिरं सुमनोहरं तन्मध्ये तुलसी स्थापयन् हरित पल्लव शोभितम्। गर्ग जी को बुला करके उनकी बताई हुई विधि से सती श्री राधा ने बड़े भक्ति भाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। श्री कृष्ण पोषणार्थाय भक्त्या परमया सती ईसु पूर्णाम समारभ्य चैत्र पूर्णावधि व्रतम्। व्रत का आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रसों से तुलसी को सींचा। तो कार्तिक के महीने में तुलसी को सींचा किससे? दूध से। और मार्ग शीर्ष में गन्ने के रस से सींचा, गन्ने का रस। और पौष में अंगूर के रस से सींचा। और माघ में बारहमासी आम के रस से, जो बारह महीने आता है आम, उसके रस से सींचा। फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से तुलसी का सिंचन किया। इस प्रकार व्रत पूरा करके श्री राधा ने गर्ग जी की बताई हुई विधि से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। पंचामृतेन तुलसी मासे मासे पृथंग पृथंग उद्यापन समारंभम वैशाख प्रतिपद दिने। प्रतिपदा मतलब पूर्णिमा के बाद होता है ना, हाँ, पड़वा, पड़वा बोलते हैं प्रतिपदा। तो वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन है ना, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि, एक उसको कहते हैं, है ना। तो क्या किया उद्यापन में? 2,00,000 ब्राह्मणों को क्या किया? 2,00,000 ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त किया, समझे। तो कृष्ण कैसे प्राप्त हुए राधा रानी को, एक एक लीला है। तो 56 भोगों से 2,00,000 ब्राह्मणों को तृप्त किया और दक्षिणा दी, वस्त्र और आभूषणों की दक्षिणा दी। गर्ग दृष्टे ने विधिना वृषभानु सुता नृप 56 भोगैर ब्राह्मणानाम द्विलक्षकम् संतर्प वस्त्र भूषणाद्यैर दक्षिणाम राधिका ददो दिव्यानाम स्थूल मुक्तानाम लक्ष्य भारम विदेहरण। तो मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1,00,000 भार और सुवर्ण का 1,00,000 भार श्री गर्गाचार्य जी को दिया। इतना राधा रानी ने दक्षिणा दी गर्ग जी को। 100-100 भार सोना और मोती परम भक्ति के साथ राधा ने एक एक ब्राह्मण को दिया। 2,00,000 ब्राह्मणों को इतना सोना ने, 100-100 भार सोना दिया। कितने मन हुआ? बहुत ज्यादा हुआ। तो ये तपस्या है, ये तपस्या है। कोटिभारम सुवर्णानाम गर्गाचार्यारे साधदो शतभारम सुवर्णानाम मुक्तानाम चातथैवी। और बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मणों के प्रति बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने ये सब चीजें दी। उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराओं का नृत्य होने लगा और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। उस समय अब तुलसी देवी प्रकट हुई। अब तुलसी देवी का कैसा रूप है? सोने के सिंहासन पर विराजमान तुलसी देवी, उनके चार भुजाएं हैं, तुलसी देवी के चार भुजाएं हैं, कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं, 16 वर्ष की अवस्था है, सांवले रंग की है, सोने के मुकुट तथा कुंडल धारण किए हैं, केसों की वेणी नागिन जैसी है। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने राधा को अपनी भुजाओं से गोद में ले लिया और उनके मुख का चुंबन करके आशीर्वाद दिया कि उन्हें श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। गंधराज श्री चैतन्य चरितामृत के